खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की सुबह हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से पालूस रसूल की जिंदगी का वो वाक्या, वो दुआ जिसके बारे में हमने कल सीखा, गहरे तौर पर सीखेंगे। सो ये हवाला हमें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 3 बाप उसकी 14वीं आयत में मिलेगा। और खुदावंद खुदा का बंदा, जैसे हमने कल देखा था कि अपने ईमानदार लोगों के लिए जिनको वो जानता है उनके लिए जो दुआ करता है, वो खासुल खास अपनी कैद में रहते हुए जो उसने दुआ की वो ये है, इफिसियों 1 बाप उसकी 18वीं आयत से 15वीं आयत से 23वीं आयत तक वो दुआ करता है कि खुदा बाप तू इनके दिलों की आंखों को रोशन कर ताकि ये उस भेद और उस रफाकत और उस मेराज को जाने जो यीशु मसीह में हासिल हैं। फिर पालूस रसूल इफिसियों 3 बाप उसकी 14वीं आयत से 21वीं आयत तक दुआ करता है कि ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में और उसकी रफाकत और शराकत में और उस भेद के बारे में जाने और उससे ऐसी मोहब्बत रखें कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई को मालूम कर सकें। और इसके बाद फिर पालूस रसूल ने दुआ की कैदखाना ही से फिलिपियों 1 बाप उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत में कि खुदा बाप तमाम ईमानदारों को कुव्वत और ताकत बख्श ताकि वो तेरी ताबेदारी और तेरी पसंदीदा और उम्दा बातों को मानने वाले बने। और फिर उसने दुआ की कुलसियों के खत में कि खुदावन तुम सबको हिकमत दनाई और अकल बख्शे ताकि तुम इस जमीन पर रहते हुए खुदा बाप का मंसूबा पूरा करने वाले बनो। इसलिए हम पालूस रसूल की जिंदगी में इस बड़ी बात को देखते हैं कि उसने दुआ की ना कि सोने चांदी के लिए, ना कि दुनिया की शान और शौकत के लिए, ना किसी और बात के लिए। उसने दुआ की कि तुम्हारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ नजदीकी और करीबी और मजबूत हो, क्योंकि वो जानता है इस राज को कि लोग तोहफा या एक दो बरस की करम नवाजी चाहते हैं, लेकिन वो जानता है कि जो करम करने वाला है, जो तोहफों का देने वाला है, जिससे हर एक चीज जारी होती है, जिसे नूरों का बाप कहा गया है, जिससे हर एक अच्छी नेमत और बरकत जारी होती है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो उसके बारे में जानता है। इसीलिए उसने इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 3रा बाप उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे 21वीं आयत तक और 14वीं आयत पर गौर करेंगे। खुदावंत का बंदा कहता है, इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिसे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से यीशु मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ कर और बुनियाद कायम करके सब मकसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और यीशु मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो कादर है, अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्तों और ख्यालों से बहुत ज्यादा काम कर सकता है कलीसिया में और मसीह यसु में। پشت در پشت عبدالآباد، اس کی تعظیم اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ وہ اس خط میں اپنی دعا میں یہ ساری باتیں کہتا ہے۔ لیکن آج ہم جس بات پر غور کریں گے کہ بائبل مقدس میں ہمیں تمام نبیوں کے بارے میں، تمام رسولوں کے بارے میں، ان ایمانداروں کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور دعا، دعا ایک ایسا جز اور ایسا ہتھیار ہے جسے ایمانداروں کو دیا گیا ہے کہ وہ قلعے ڈھا سکتے ہیں۔ دعا ایسا وسیلہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا باپ سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سو جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، اسی سبب سے میں، یعنی کہ پالوس، اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ ہمیں بائبل مقدس میں بہت سے مختلف طریقے ملتے ہیں ایمانداروں کی زندگی سے کہ وہ کس طرح دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہام جب خداوند خدا کے وسیلہ سے، کہا جاتا ہے کہ تین مردوں نے جو اس کے پاس آئے، اس کے خیمہ کے سامنے مہمانوں کے طور پر آئے، تو اس نے انہیں اپنے گھر میں اتارا۔ تو وہاں پر ابراہام نے جب رحم کی اپیل کی، درخواست کی کہ صدوم اور امورا کو تباہ نہ کر، تو وہ خداون خدا کے حضور کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا خداون خدا سے کلام اور خداون سے کیا کرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ اس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے پیدائش 18 باب اس کی 22 آیت میں کہ ابراہام نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ پھر ہم جب کلام خدا میں دیکھتے ہیں تو سلیمان بادشاہ کے بارے میں، جب اس نے خداوند سے حکمت اور دنائی مانگی تو اس نے جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، اس نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی۔ اس کے بعد جب ہم داؤد کو دیکھتے ہیں، خداوند کا بندہ داؤد، پرستکار جو خداوند کی پرستش اور عبادت اور ایسا چرواہا تھا، تو اس کو دیکھتے ہیں تو پہلا تواریخ اس کا 7 باب 17 باب اس کی 16 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بیٹھ کر خداوند خدا کے حضور دعا کی۔ اور پھر ہم جب دانیل کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دانیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند خدا کے حضور جھکتا تھا کہ ہیکل کی طرف منہ کر کے دن میں 3 دفعہ خدا کے حضور جھک کر دعا کرتا تھا۔ اور پھر یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی سے جب وہ دعا کرتا تھا تو وہ زمین پر گر کے دعا کرتا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گتسمنی باغ میں یسوع مسیح نے جھک کر دعا کی، زمین پر لیٹے ہوئے گرے ہوئے دعا کی۔ سو ہمیں بہت سے مختلف انداز بائبل مقدس میں ملتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح دعا کریں۔ جیسے یسوع مسیح کے شاگردوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں بتا ہم کس طرح دعا کریں، کیونکہ یوحنا اور فریسیوں کے شاگرد اس طرح دعا کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے ان کو سکھایا کہ تمہارا رشتہ کیا ہے، کہ تم اس طرح دعا کیا کرو، کس طرح کہنا کہ اے ہمارے باپ۔ یہ دعا یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھائی تھی کہ تمہارا رشتہ اس آسمانی خدا سے کیا ہے، باپ کا ہے۔ سو آج ان تمام مثالوں کو، بہت سی اور مثالیں ہیں، ہم ان سب کو نہیں دیکھیں گے، ابراہام، اس کے بعد سلیمان بادشاہ، داؤد بادشاہ، اس کے بعد پھر دانیل، پھر خداوند یسوع مسیح خود اور پالوس رسول۔ 14 آیت میں کہتا ہے، اسی سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ یہاں پر اس کا اپنا کیا کہتے ہیں، ایک طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ وہ قید خانہ میں ہے، اور رومی حکومت میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب وہ کسی بادشاہ کے آگے और खुदामदों के कहते हैं कि खुदा जिसे वो कहते थे, रूमी अपने बादशाहों को खुदावंद भी कहते थे, तो उनके तमाम सिपाही उनके आगे घुटने टेक कर कहते थे जो भी उनका फिक्रा होता था अपने हाकम के लिए। तो पालूस रसूल के जहन में गालबन खुदा के पाकरू ने ये बात डाली और वो इससे वाकफ था कि यीशु मसीह इन बादशाहों और इन हाकमों की तरह आरजी हाकम नहीं है, बल्कि ऐसा हाकम है, ऐसा इज्जत वाला है, ऐसा आले मर्तबे वाला है जिसकी इज्जत को ना कोई कभी खराब कर सकता है और ना ही खत्म होगी। इसी सबब से वो कहता है कि मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं, बाप के आगे घुटने टेकता हूं, और ये इस तरफ इशारा करता है उसकी मोहब्बत, उसकी इज्जत, खुदावन के साथ उसकी लगन, खुदावन के साथ उसका अपना जाती रिश्ता। सो पालूस रसूल अपनी जिंदगी में इस बात को मुतारफ कराता है और कहता है इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। हर एक खानदान नाम जद है, यानी कि खुदावंद खुदा ही है जिसने बनी नू इंसान को पैदा किया है। पहले आदम के वसीला से, पहली औरत के वसीला से तमाम नस्ल इंसानियत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और चलती चली आ रही है। तो वो अपनी दुआ में खुदा बाप को अपना पिता, अपना बाप, अपना करता धरता मानता है। सो हम इसमें से इस थोड़े वक्त में क्या सीख सकते हैं कि पालूस रसूल खुदावन खुदा के हजूर घुटने टेकता है जो इज्जत और एहतराम की तस्वीर को जाहर किया गया है। हम किस तरह खुदावन खुदा को इज्जत और एहतराम देते हैं, क्योंकि पालूस की जिंदगी में जो कुछ वो कहता है उसका सबूत नजर आता है। सो हमारी जिंदगी में क्या सबूत है? मिसाल के तौर पर जब किसी की शादी होती है तो वादा क्या किया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा जिंदगी गुजारेंगे, दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में एक दूसरे के साथ रहेंगे। और उसका सबूत क्या होता है? खामद और बीवी हमेशा, बीवी क्या रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। और आज के दौर में जो दौर, जदीद दौर जिसे कहा जाता है, और दुनिया बहुत दफा पर्दा पाने के लिए कहते हैं कि जी तरक्की का दौर, नई नई बातों का दौर, बाइबल मुकद्दस इसे कहती है कि ये आखिरी दौर है, ये बेहयाई का दौर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बेअदबी का, नाफरमानी का, बुत परस्ती का, खुदा की मुखालफत का। सो दुनिया और खुदा के कलाम में से हमें जो बात मिलती है वो वाजिया मिलती है कि खुदा कहता है कि ये वो दौर है कि आखिरी दौर में क्या होगी? नाफरमानी, लापरवाही, लाचारी, बदगुमानी, बेईमानी, सब बातें जिसके बारे में खुदा का बंदा पालूस रसूल तमोथियस को लिखते हुए ये बातें कहता है। सो सवाल ये है कि हम अपनी मोहब्बत का सबूत किस तरह दे सकते हैं? खामद अपनी बीवी से मोहब्बत करके, उसकी देखभाल करके, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करके, उसकी हफाजत करके, और दूसरी बहुत सी बातें हैं जिनकी बड़ी लिस्ट है जो कि हम देख सकते हैं, ख़ासकर हम जो शादीशुदा हैं, कि हम खुदावंद के सामने ये वादा लिया कि मैं अपने इस बदन को पालूंगा, इसे संभालूंगा। और उसका सबूत क्या होता है? हम अपने बदन को पालते हैं, उसको ढकते हैं, उसके सर पर छत का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का, हर तरह की बीमारी मुश्किल दुख तकलीफ़ में साथ रहते हैं। तो ये क्या हुआ? सबूत हुआ। ये खामद और हस्बैंड की बीवी का सबूत। ईमानदार होते हुए यीशु मसीह भी हमसे कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सबूत क्या है, क्या फल है? क्योंकि पालूस रसूल की जिंदगी में हम फल को देखते हैं। सो आज हम सबको अपने आप से ये सवाल, मैं अपने आप से कर रहा हूँ, आपका खुदा के साथ खुद सवाल करने का अपना तरीका कार है। मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी से खुदावन खुदा के लिए फल पैदा कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं अच्छा खुदावन का ताबेदार खादम हूँ या नहीं? क्योंकि इन बातों की हमें फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपनी कमज़ोरी पर गौर करता है वही जोरावर होता है, और जो बंदा अपनी कमज़ोरी को अनदेखा कर देता है वो कभी भी कामयाबी को नहीं देखता, क्योंकि वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरी को इनकार कर दिया। सो पालूस रसूल की ये दुआ है, इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। हर एक ख़ानदान को खुदावन्द खुदा कहता है कि ये मेरा है, मैंने इनको पैदा किया है, मैं ही इनका बनाने वाला हूँ। और 16वीं आयत में कहता है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में, यानी अपनी जिस्मानी हालत में, अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों के बावजूद बहुत ही जोरावर हो जाओ, जोरावर हो जाओ रूहानी तौर पर, मसीह के साथ तलक में, मसीह के साथ बातचीत में। सो दुआ ऐसा हथियार है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे तो अबलीस की धतियां उड़ा देंगे। दुआ ऐसा हथियार है जब हम खुदावन के रूह की रहनुमाई में करेंगे तो चाहे यरू की जैसी कई दीवारें हमारे आगे हों, कितनी बड़ी भी दीवार हो, खुदावन उस दीवार को घिरा सकता है। और ये तब होगा जब लोग इस बात को मान लेंगे कि खुदावन खुदा है और हम इंसान हैं। इसलिए हमें जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है, जो कुछ खुदा के लिए है वो खुदा करेगा। जैसे यीशु मसीह ने वाज़ह तौर पर जब उसे फंसाने के लिए मज़हबी रहनुमाओं ने कहा कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है, तो उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। इसलिए जो हम कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है, जो खुदा करता है उसे करने दें। पालूस रसूल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गहरा और साफ और सादा राज यही था कि जो कुछ वो कर सकता था उसने अपनी मसीही ज़िंदगी के सफ़र में किया, और जो कुछ खुदा का था उसने खुदा को करने दिया। सो हम भी अपनी ज़िंदगी में पालूस की ज़िंदगी से सीखें और दुआ करें हर रोज़ कि खुदा बाप, जो मुझे कुछ करने के लिए तूने पैदा किया है उसे करने की और समझने की हिकमत बख्श, और जो तू कुछ करने वाला है और कर सकता है और तेरे सिवा और कोई नहीं करेगा, तू कर ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। अहम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं जैसे जदाउन के साथ तूने खुदावन खुदा उन तमाम सिपाहियों को कहा कि घड़े बनाओ, उनमें मछले डालो और जाकर उन घड़ों को तोड़ दो, बाकी मेरा काम है। सो खुदा बाप, हमें भी इसी तरह तैयारी करने की कुव्वत और ताकत दे कि जो काम हमें करना है उसे करने की कुव्वत और ताकत बख्श, ताकि आखिर में यही कहें कि यहोवा हमारे लिए जंग लड़ने वाला है और वो ही फाते है। यीशु मसीह के नाम में आज हम सब के साथ हो, और खुदावन खुदा अबलीस के जलते हुए तीरों को, झूठों को, वबाओं को, खुदावन खुदा और उन दीवारों को जो हमारे रास्ते में आती है, यीशु नाम में खुदावन खुदा तू ढाता जा, और खुदावन हम तेरी फतह में और तेरी रोशनी में और तेरी मोहब्बत में और तेरे साथ रफाकत में चलते जाएँ। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।